अच्छाई वाली जिंदगी इख्तियार करे तो खुद अच्छा बनेगा, مفسر فرماتے ہیں ایمان سے بہتر کوئی نعمت نہیں ہے, اچھا بننے کے لیے کوئی چیز نہیں. عمل صالح بغیر آدمی اچھا نہیں بن سکتا, چاہے ظاہر میں کتنا تیز کر لے, اپنے آپ کو سنوار لے, لیکن اندر کی دنیا بغیر ایمان کے خوشبودار ہو ہی نہیں سکتی. دنیا بھر کی عطر خوشبوئیں اور مہکوں سے اپنے آپ کو آراستہ کر لے, لیکن اندر کی دنیا اس کی بدبودار ہی رہتی ہے. ایک مرتبہ ایک بزرگ اپنے قافلے و جماعت کے ساتھ جا رہے تھے. ایک آدمی ایک جگہ میلہ لگا بھی ہوئے کرتب دکھا رہا ہے. ایمان اور اعمال کتنے خوشبودار ہیں اور کفر و شرک میں کتنی بدبو ہے. یہ تو وقتی طور پر اللہ نے اختیار دیا ہے, اس لیے کہا قرآن پاک میں کہ کافروں کے ماں اولاد ان کی طاقت و ان کی قوت اور ان کی سلطنتوں کو دیکھ کر لچاؤ نہیں اور نہ گھبراؤ, ان کی تو دنیا ہی سب کچھ ہے. اب دنیا سجن المؤمن و جنت للکافر, ہمارے لیے کیئر خانہ ہے. کیئر کا مطلب ہم آزاد نہیں ہیں, ہم پابند ہیں. بولنے میں, چلنے میں, لکھنے میں, دیکھنے میں, ملنے میں, رات گزارنے میں, دین کے گزارنے میں, کمانے میں, خدمات میں, ہم آزاد نہیں پابند ہیں. ہنسی میں, خوشی میں, غمیوں میں, مسرتوں کے ایام میں ہم پابند ہیں. کافر آزاد ہیں. ان کے خوشیوں کے دن بھی آپ دیکھو حلاقت کے ذریعے ان کے لیے بنتے ہیں اور ہمارے ہمدردی کا ذریعہ بنتے ہیں, خیر خواہی کا ذریعہ بنتے ہیں. ہزاروں لوگوں کو یعنی روزیہ اور ہزاروں لوگوں کے چولہوں کے ذریعے یعنی جلانے کا ذریعہ بنتے ہیں. ہماری تو خوشیاں بھی ہمدردی سے خالی نہیں ہوتی اور ان کی خوشیاں بھی بغاوتوں اور نافرمانیوں سے دوست و بزرگ کو بھجی ہوئی ملتی ہے. تو بزرگ جا رہے تھے, دیکھا کرتب دکھا رہا ہے. مجاہدہ جو بھی کرتا اللہ اس کو طاقت دیتے ہیں, کافر ہو, مشرک ہو, فاسق ہو, مرد ہو, عورت ہو, مسلمان ہو, غیر. اللہ کا دستور ہے دو چیزوں میں, ایک روزی کمانے نکلنے میں اور ایک مجاہدوں میں. اللہ ہر ایک کو دیتے ہیں. بزرگوں سے کرامت ہوتی ہے, غیروں سے استدراج ہوتا ہے, نبیوں سے معجزے ظاہر ہوتے ہیں. تینوں چیزیں الگ الگ ہیں. معجزے خاص نبیوں کے ساتھ ہیں اور کرامتیں اللہ والوں سے مجاہدوں اور ریاضتوں اور قربانیوں اور عبادتوں پر اللہ ظاہر کرتے ہیں. جیسے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی بہت ساری کرامات, پیران پیر دستغیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ہزاروں کرامات, پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 360 معجزات, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنے بھاری معجزات دیے کہ آج بھی دنیا ان کو مانتی ہے. اس زمانے میں طب اور ڈاکٹر عروج پر تھی, کوہری کا علاج نہیں, ہاتھ پھیر دیتے اچھا ہو جاتا, مادر ذات ہندے کے آنکھوں پر ہاتھ پھیر دے دیکھتا ہو جاتا, مٹی کی چڑیا بنائے اور اللہ کے حکم سے بھی دلی کا لفظ قرآن میں کہا جو بھوک مانتے ہواؤں میں اڑتی نظر آ گئی. یہ معجزات تھے ان کے. پیغمبر اسلام کے پاس ایک دیہاتی آتا ہے مری ہوئی گھوڑ لے کر اور یوں پھینکتا ہے اور کہتا ہے اگر ایک ہوا ہی دے تو میں ایمان قبول کروں. اب عقل میں آنے والی بات نہیں, مری ہوئی بے زبان مخلوق کو زندہ ہو پھر بولے گا میں ایمان لاؤں. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں دنیا. نبیوں کو ایسے درجہ نہ ملے, اللہ والوں کو ایسے درجہ نہ ملے, ان کے مجاہدوں پر ملے. ہم ان کی افطاری دیکھتے ہیں, ان کا روزہ اور بھوک تو بھول جاتے ہیں. اس لیے کہا ہمیں تو بزرگوں میں مجاہدے دیکھنے, ان کے سوالے دیکھنے, صحابہ کی کارگزاریاں پڑھنی. آدمی سمجھتا ہے بٹن دبایا پنکھا چل گیا, میں ایک نماز پڑھ لے دعا کر لے کپور ہو جائے گا. بعض نبیوں کی سالوں بعد دعائیں کپور ہوئی. بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم نے خواب دیا آج تعبیر لے اور حاضر ہو جائے گی. حضرت یسوع علیہ السلام نے خواب دیکھا, سالوں بعد تعبیر عمل میں آئی. یہ ہے مجاہدوں ریاضتوں قربانیوں کا امتوں کو کھڑا کیا گیا. तो किसी की कर्तव्य देखकर किसी गैर का इस्तेदराज देखकर कभी धोखे में ना आना। पिछले शेख ने फजाइल में बाब कायम किया अहलुल्लाह की पहचान का, खिलाफे पैगंबर कसेरा गजीर के हरगिज बमंदिल ना हद रसीद, पैगंबर का एक तरीका छोड़े और दावा करे में अल्लाह वाला नहीं हो सकता। हाँ, एक आदमी की शोहरत सुनी तो उलमा की जमात इनको देखने गई, तो देखा सिजदा कर रहे नमाज में, तो नमाज में सिजदे में उंगलियों को मिलाने का हुक्म दिया। ये सुन्नतों में 51 सुन्नते हैं, एक एक सुन्नत पर अजीम है, आसमान जमीन इसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो देखा ये अल्लाह वाला नहीं हो सकता। पूछे क्यों? फरमा इसके नमाज को खिलाफे पे अमल जा रहे हैं। एक एक चीज जाहिर की बातिन की खलवत की जलवत की रातों की दिनों की कमाई शारे अलैहिस्सलाम एक शरीयत ने कहा है। हमारे लिए दुनिया वाले रहबर नहीं है, हम खुद रहबर है। उफरियत लिलना सैयद हिरत लिलना, कि तुम अपनी जिंदगी सहाबा वाली बना लो, दुनिया में भी रहबर बन जाओगे और अल्लाह ताला सहाबा की जिंदगी से राजी, जो उनकी जिंदगी इख्तियार कर लेगा अल्लाह उनसे भी राजी। 11वें पारे रुकू नंबर 2 की पहली आयात में फरमाया والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، مولانا قاسم نانوتوی دارالعلوم دیوبند کے بانی فرماتے تھے شہرت یافتہ تو دنیا میں ہزاروں ملیں گی، اللہ کے یہاں ان کا مقام نہیں ہے، اللہ کے یہاں تو ایمان والے مرد عورتوں کا مقام ہے، شہرتوں سے کچھ نہیں ہوتا، مقبولیت و محبوبیت سے ہوتا ہے، और महबूबियत और मकबूलियत ऊपर से चलती है और शहरतें नीचे से चलती है और गलियों से चल के वही के वही आके खत्म हो जाता है। और ऊपर से जो निजाम चलता है वो हमेशा रहता है। आज 1440 साल हो गए, अभिषेक दिनों बाद 41वां आएगा। आज तक सहाबा की सहाबिया की अंबिया की बुजुर्गों की और बुजुर्ग औरतों की कितना अदब एहतराम से लोग नाम लेते ऊपर से चली। एक बुजुर्ग ने किताब लिखी, उसने पैगंबर अलैहिस्सलाम की हदीसें लिखी, तो साहब और नाम लिखते आपका नाम आता तो मना किया। खाब अल्लाह के नबी ने कहा कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखो, मेरे नाम के आगे पूरा दोहरी शरीफ लिखो, ये अजमतें हैं कि कुर्बानियां देकर गए। तो वहां अल्लाह वाले गए तो देखा उस गैर ने इतना मुजाहिदा किया, इतना किया, बड़ी बड़ी मूछे, फरागंदा बाल और लिबास, पर एक प्याला होता पानी का, उस पानी में अपने पांव का अंगूठा डालता, पिघलते पिघलते छोटे प्याले में पूरा चला जाता। लोग हैरान, ऐसा आदमी तो आज तक नहीं देखा। फिर धीरे धीरे बाहर आता और पूरा आदमी बन जाता, मुजाहिदों पर मिलता है। और मैं कह रहा था दूसरी चीज रोजी, आदमी अल्लाह ने हरे कि हलाल रोजी उतारी, कुछ जल्दी करके कुछ उजलत में आके अल्लाह को फरमाते इंसान को अपने जज्बात पे अदा किया, वो जिस मैदान में जाएगा अल्लाह रोजी देंगे। बर्तन आदमी ऊंधा करेगा बारिश में तो बारिश नीचे जाएगी, सीधा करेगा तो अंदर आएगी। अल्लाह ने हरे के लिए हमारे पैदा होने से 50,000 साल पहले रज़ा के खुदा ने हमारे रोजी लिख दी है। ये तो हाथ पांव हिलाने का इसलिए ताकि फरीदों के बाद सबसे बड़ा फरीदा ये कि हमारे लिए हमारे औलाद का नफका वाजिब है। पर हरेक के अल्लाह ने हलाल रोजी लिखी, अल्लाह नफीस है, नफाकत को पाक करते हैं। आदमी बासी खाना खाता है जाहिरी बीमारियों का शिकार बनता है, हराम खाता है, सबसे पहला उसका असर उसकी दुआ पर जाता है, उसकी दुआ कबूल नहीं होती। हज्जाज इब्न यूसुफ बड़ा जालिम, 1,00,000 बुजुर्गों सहाबा ताबीन तक को नहीं छोड़ा, अपने हाथ को खून से लाल करके गए, अजाब भी इतना ही खतरनाक मिला। उलमा ने लिखा इतना बड़ा काम उसने किया कि कुरान पर फतह जबर कसरा नहीं थी जबर भी ये लगाया उसने, बड़ा जानकार था। आज की लामी भी बड़ी जानकार होती है, जानकारी से नफा नहीं मिलता, अमल से नफा मिलता है। आज जितने भी हैं जो फिरौनियत के दावे करते सब जानते हैं, इनको पता नहीं ईमान वाला है तो दुनिया का कारखाना चलता है। ये तो ईमान वाली ईमान वालों के बरकत से खाना पीना रहना सहना मिलता है। पैगंबर इस्लाम ने कहा कि अगर अल्लाह ताला मेरी वजह से मेरी कौम की हिफाजत न करता तो कल के मस्क हो जाते, फस हो जाते, आसमानों के पत्थरों और आगों की बारिश होती। ये तो अल्लाह के नबी रहमत थे, इनके रहमत चलेगी हम पर। तो बहरहाल वो बुजुर्ग ने देखा जो बड़े लोग हैं इसको मानते हैं, वैद की दावत देते हैं। तो उन्होंने बुजुर्ग से कहा ये तो मैं भी कर सकता हूँ। कहा कोई नहीं कर सकता, मैंने इतने साल मुजाहिदे किए, ये किए, 45 साल तक तो मैं एक कमरे में बंद रहा हूँ। हम तो थोड़ी देर मस्जिद में रह जाए तो हम खुद जानते हैं क्या हाल होता है। बिजली चले जाए तो बगैर पंखे बिजली के, हजरत अबू उबैदुल्लाह ने जर्रा जैसे उसकी जिंदगी लिखी उलमा ने, पानी में नमक डालता, सूखे रोटी दो उसी को खाना खा, ये मुजाहिदे थे। बुजुर्ग आलिम दीन ने कहा मैं भी कर सकता हूँ। उन्होंने कहा संभल के बोलो। कहा दो प्याले मंगाए, दो रुमाल मंगाए और मुरीदीन से कहा जब दोनों अंदर चले जाए तो दोनों रुमालों में अलग, दोनों प्यालों में अलग अलग रुमाल डालकर दोनों को अलग कर देना। पंडित जी से कहा अगर मैं उसमें कामयाब हो गया तो क्या? तो कहा हम सब ईमान ले आए। और उसने कहा अगर तुम न हुए तो कहा हम सब आपको मान लेंगे। इस्लाम की हकानियत का ये था, ये हर आदमी नहीं कर सकता, अल्लाह वाले थे। पंडित से कहा पहले तुम जाओ या मैं? अल्लाह वाले ने कहा दस्तूर यही है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था जादूगरों से पहले तुम डालो, हम भी कुरान के पीछे नजर कहेंगे तुम जाओगे। वो गए तो वही तालियां मारी, फिर अल्लाह वाले गए तो और शोर हो गया। अब मुरीदीन ने दोनों कपड़े निकाले और दोनों के प्यालों में डालकर अलायदा अलायदा कर दिए। ईमान वालों की जिंदगी कितनी खुशबूदार और गैरों की कितनी बदबूदार, ये जुमले पर वाकिया उलमा ने लिखा है। दोनों आ गए और शोर हुआ। वो प्यालों में रुमाल डबों के अलग कर दिए गए थे इनको भिगो के। जब दोनों आए तो पंडित से कहा आपका रुमाल ही है सूखो, तरी बदबू आ रही थी, नाक की तरफ ले जाते ही फेंक दिया। पर अल्लाह वालों की सूंघने पर एक खुशबू आई, सीने से लगा तो कहा अब सुकून आया। क्या वजह? कहा वजह सिर्फ ये है आपके मुजाहिदे कुफर के साथ हैं, मेरे मुजाहिदे ईमान के साथ हैं। ये बदबू ईमान की है और ये गंदगी कुफर की है। अल्लाह ने हमें वो ईमान दिया है, हम तो ऐसे भी बड़े खुशबूदार हैं। हमारा खून तो इतना पाक है कि गंदी चीज से फूंकना भी मकरूह लगता है। हम तो इतने ईमान वाले पाक हैं, हमने अपनों ही की अजमत नहीं समझी कि ईमान वाला कितना अजीम है। अल मुख्तसर करते हुए अल्लाह ताला ने इस आयात में भी फरमाया ईमान वाले ईमान वालों के आपस में दोस्त होते। किसी ने खैरखाही में कोई बात कही ये हमारा दुश्मन नहीं, ये हमारा खैरखा है। किसी ने कोई रहबरी की, कोई मशवरा दिया, ये हमारा खैरखा है, ये हमारा दुश्मन नहीं है। हमारा दुश्मन तो हदीस पाक में यूं फरमाया कि तेरे दम भी तेरे पहलू में जो बैठा है नफ्स, ये तेरा दुश्मन है। शैतान तेरा दुश्मन है, ये गहराते दुश्मन है। मौलाना उमर बालंगुरी फरमाते थे कि वैर भी और निरादरा ने बदल भी, ये यहूद और नसारा भी ईमान ले आए तो हमको सीधे से लगा, ये तो हमारे भाई हो गए। इसलिए कहा आसी से नफरत न करो, मासियत से नफरत करो। हजरत थानवी ने आज जब लोग दूर होते इसीलिए कि किसी में ऐब देखा इससे नफरत, इससे मिलना छोड़ देते, नहीं। अल्लाह वाले तो देखा ने अभी पंडित से मिले, गले लगाए, कलमा पढ़ा, हजारों की जन्नत बन गई। अगर न जाते तो कैसों के पास क्या जाए, लेकिन हरेक की बस की बात भी नहीं कैसों के पास जाए। हाँ तो करीम किया, सीनों से लगाया और हजारों लोगों पर लाने जहन्नम से बचा। पैगंबर इस्लाम तो गुलाम ने दावत दी, नौकर ने, नौकर के वहां गए और खाने पे गए। यहूदा ने दावत दी कहां गई और जहर मिलाया, और बकरी के गोश्त ने कहा कि मेरे अंदर जहर मिलाया। आपकी वफात जो हुई आप शहीद बने, हदीस में आता है किताबों में, ये असर आपको अखीर का उभरा। लकीद ने आप पर जादू किया लेकिन आपने बदुआए नहीं, अपने दान के लिए कभी आपने बदुआए नहीं, बर्दाश्त किया, माफ कर दिया उम्मत को, और एक सबक देकर गए कि मेरी कौम नहीं जानती अल्लाह को उन्हें हिदायत। तो बहरहाल दोस्तों बुजुर्गो, अल्लाह ताला ये आयत करीमा में यही फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ईमान वालों के दोस्त हैं और उनको जुल्मात और गुमराहियों से निकालते हैं, और शैतानी लोगों को अच्छाई से गुमराही में ले जाते हैं। अबू दाऊद शरीफ की रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जमाना मेरी उम्मत पर ऐसा आएगा कि लोग अच्छाइयों से रोकेंगे, बुराइयों का हुक्म देंगे। अब्दुल्लाह ने मसूद ने फरमाया ऐसा होगा, आपने फरमाया वह कदाली का अशद इससे भी ज्यादा सख्त होगा, और फरमाया अमीर को खाइन और खाइन को अमानतदार कहा जाएगा, मजलूम को जालिम, जालिम को मजलूम कहा जाएगा। फरमाया कि ऐसा वक्त आएगा कि औरतें बिल्कुल पहना नजर आएगी, इनके कपड़े ऐसे बारीक हो जाएंगे। अल्लाह के नबी ने लानत की ऐसे औरतों पर, फरमाया एक जमाना ऐसा आएगा कि मेरे उम्मत के औरतों और बच्चों में ऐसे पाक आम हो जाएंगे, लोगों को पसंद आएंगे। जो चीजें अल्लाह के नबी ने पसंद मना की, इन लोगों के फैशन बना के आम कर, मासूम बच्चे बिचारे, इनको लड़कों को लड़कियों का लिबास, लड़कों को लड़कियों का कहना है, ये तो लानत फरमाई। जिस नबी पर जादू किया गया, आपके दंदा ने मुबारक, मुफस्सिर अल्लाम सुयूती फरमाते चार दाम रुबाई शहीद हुए, आपने बदुआ नहीं की, लेकिन माशरों में गंदगी और माशरों को, यानी बनी हुई को सोसाइटियों को, यानी उजाड़ने वालों के लिए आपने बदुआई की। दोस्तों बुजुर्गो, ये चीजें आज आम होती जा रही, हम तमाम की जिम्मेदारी बनती है कि हम खुद भी, ये तो होने वाला ही है, पैगंबर इस्लाम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशीन वही थी वो तो होगी। हम बच्चे अपने औलादों को बचाए, अपने फैमिलियों को बचाए, ये हम तमाम की जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला हमें भी अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, जुमा को हमारे खिदमत में चंदे के सिलसिले में